आगे रखो नंबर 10 है, 181 से 189। टॉपिक है मिशने मोहम्मदी को आगे बढ़ाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द समी अल्लाहु कौल लदीन, यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों का कॉल भी सुना। किन लोगों का? जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फकीर है और हम दौलतमंद हैं, नऊसुबिल्ला। इनके इस कॉल को हम लिख लेंगे और इनका अम्बिया को कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे कि जलाने वाला अजाब चखो, ये तुम्हारे पेश करदा अमाल का बदला है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना माने जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी ना लाए जिसे आग खा जाए। आप कह दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दीगर मौजज़ों के साथ ये भी लाए जिसे तुम कह रहे हो, फिर तुमने इन्हें क्यों मार डाला? फिर भी अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी बहुत से वो रसूल झुटलाए गए जो रोशन दलीलें, सहीफे और मुनव्वर किताब लेकर आए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का जायका चखने वाली है, और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे के पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बेशक वो कामयाब हुआ। और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। फमन ज़ुख़्ज़िहा नारी बोध खिलल जन्नत फ़कत फ़ास वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरू। असल कामयाबी साइड में छुपी हुई है, हम पता नहीं किस चीज़ को कामयाबी समझते रहे। यकीनन तुम्हारे मालों और जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, और ये भी यकीन है कि तुम्हें इन लोगों की जो तुमसे पहले किताब दिए गए और मुशरिकों की बहुत सी दुख देने वाली बातें भी सुननी पड़ेंगी। और अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और अल्लाह ताला ने जब अहले किताब से अहद लिया कि तुम इसे सब लोगों से ज़रूर बयान करोगे और इसे छुपाओगे नहीं, तो फिर भी इन लोगों ने इस अहद को अपनी पीठ पीछे डाल दिया और इसे बहुत कम कीमत पर बेच डाला। इनका ये व्यापार यानी कारोबार बहुत बुरा है। वो लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया इस पर भी तारीफें की जाएं। आप इन्हें अजाब से छुटकारे में न समझिए, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। क्या पता चला? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स मौत को चखने वाला। क्या मेरी तैयारी है मौत की? खुद से पूछिए, मेरी तैयारी कैसी है? हम तो मौत के लफ्ज़ से डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अमल के रवैये नोट कीजिएगा, अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए किताबे इलाही की तालीमात को आगे पहुंचाना है इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाना है, सब्र करना है, अल्लाह के अहकामात तब्दील नहीं करने, हक बात कहनी है, झूठ नहीं बोलना, और अल्लाह को गनी और ख़ुद को फ़कीर समझना है, और अल्लाह ऐसी गुस्ताखियों से बचाए। इसके बाद जी आखिरी रुकू सूरत आले इमरान का, रुकू नंबर 11 है, 190 से 200। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठते बग़ैर वुजू किए अपनी जगह पे बैठकर इस रुकू की तिलावत करते थे। आज साइंस ने कह दिया कि लेटा बंदा एकदम खड़ा हो जाए तो हार्ट अटैक का डर है। सुन्नत से पता चल गया कि लेटे हुए थे ना सारी रात, आपका ब्लड ऐसे था। अब थोड़ी देर इसको यूं करके बिठाइए ताकि आपके दिल पे बोझ ना आए। करना क्या है? एक रुकू तो क्या है, गौर व फिक्र का मजमू है, मकसद हयात, कायनात पे गौर व फिक्र। तर्जमा पढ़ के इस पे बात करते हैं। इन्न फी खल्क़ समावाती वल अर्द, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के हेर फेर में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। कौन होते हैं अक्लमंद? अल्लज़ीना यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, जो अल्लाह ताला का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं, और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, और कहते हैं कि हमारे परवरदिगार तूने ये बेफायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस ऐ रब हमें दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ले, ऐ हमारे पालने वाले तू जिसे जहन्नुम में डाले यकीनन तूने उसे रुसवा किया, और ज़ालिमों का मददगार कोई नहीं। रब्बना, ऐ हमारे रब, हमने सुना कि एक मुनादी वाला यानी पुकारने वाला, एक मुनादी करने वाला बावाज़े बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है कि लोगो अपने रब पर ईमान लाओ, बस हम ईमान लाए। या इलाही, अब तो हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे और हमारी मौत नेकों के साथ कर। ए हमारे पालने वाले माबूद, हमें वो दे जिसका वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़ुबानी किया है, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कर, यकीनन तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, बस इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमाई कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम को, ख्वा वो मर्द हो या औरत, मैं हर किस ज़ाया नहीं करता। अल्लाह आप सब की कोशिशों को भी ज़ाया होने से बचाए। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो, इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईज़ा दी गई और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं ज़रूर बिल ज़रूर इनकी बुराइयां इनसे दूर करूंगा और बिल यकीन इन्हें जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये है सवाब अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन सवाब है। तुझे काफिरों का शहरों में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे, ये तो बहुत थोड़ा फायदा है। इसके बाद का ठिकाना तो जहन्नम है और वो बहुत बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से, और नेकुकारों के लिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर है। अल्लाह सब की भी मेहमानी करे जन्नतों से, और जो लोग दीन के नाम पर एक दूसरे की मेहमानियां करते हैं अल्लाह उनकी मेहमानी करे। यकीनन अहले किताब में से बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है और इनकी तरफ जो नाजिल हुआ है इस पर भी अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर बेचते भी नहीं। इनका बदला इनके रब के पास है, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। आखिरी आयत बड़ी खूबसूरत है, सूरत पूरी का खुलासा है। या अय्युहल्लज़ीना मनुसबिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रहो और जिहाद के लिए तैयार रहो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह को पाओ मुराद को पहुँचो। क्या पता चला उम्मते मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनका हल पढ़ रहे हैं हम इस पूरे चौथे बारे में। शुरू से आज तक गिनते जाइए। अभी इस रुकू में से जो आपको मुझे अपने अमल के नुक्ते मिले, पहली बात है तहज्जुद के वक्त इस रुकू को पढ़ना है, फजर की नमाज से पहले उठने की कोशिश करनी है, अल्लाह ताला की निशानियों से सबक लेना है, सब्र करना है और सब्र से मुकाबला करना है, हक की खिदमत के लिए तैयार रहना है, दोजख के अजाब से बचने की दुआएं करनी है, ज़मीन आसमान की तख्लीक पर गौर व फिक्र करना है और अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखना है, फिर अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की पुकार को सुनना है, अल्लाह की तरफ खुद भी लोगों को बुलाना है, गलतियों की माफ़ी मांगना है और अल्लाह के आगे झुकना है, और अल्लाह ताला के लिए हिजरत करनी है और नेक लोगों की सोहबत की दुआ करनी है। अल्लाह आपको ये सब कुछ अता करे। हमने अभी तक सूरत बकरा और सूरत आले इमरान में जो कुछ पढ़ा, अल्लाह ताला इस पे हमें अमल की तौफीक दे। जैसे सहाबा का ईमान बढ़ा इन आयतों को सुन के, अल्लाह हमारा भी बढ़ा दे। हमने कुरान पाक की दो बड़ी सूरतें पूरी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाही बिनेमतिही ततिमु सालिहात। अब हम शुरू करेंगे तीसरी लॉन्गेस्ट सूरा, सूरत निसा, जिसमें पहली 23 आयतें ओनली इस पारे में हैं और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पारे की कल पढ़ेंगे। चौथी सूरत है। मज़े की बात है कि सूरत निसा तो है कुरान में, सूरत रिजाल कोई नहीं, अल्लाह ने वीमेन राइट्स दिए हैं, आपकी सूरत है। कल अपनी बेटियों को लेकर आए, अपनी बहनों को लाएं, क्योंकि बहुत सारे अहकाम हैं बिल्कुल पारे के शुरू में, निकाह के और तलाक के, और कोर्ट मैरिज हो सकती है कि नहीं, और वली की क्या ज़रूरत है, और अब्बा नहीं मानते तो क्या फिर भाई को मना लूँ, या सो ऑन। अल्लाह करे कि हमारी नस्लें कम से कम इस महीने में कुरान के लिए वक्त पा लें। अगर ये वक्त आपके बच्चों को आने को सूट नहीं कर रहा, छुट्टियाँ नहीं आप ले दे सकते, शाम को उनको सुनवा दीजिए, लेकिन एक दफ़ा कोशिश कीजिए कि ये दौरे कुरान आपके साथ आपके घर वाले भी सुने। घर जाकर आप भी उनके साथ दोबारा सुन लीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। इस वक्त आप इसका हिस्सा हैं, पता है आपको। मेरा नाम तो शायद किसी को याद रह जाए, लफ्ज़ नूरुल कुरान भी याद रहे, चैनल भी याद रहे, आप में से किसी का नाम नहीं याद होगा किसी को। लेकिन क़यामत तक ये सेट कायम रहेगा ना, तो आप सब खामोश गवाह हैं इसके। आप शोर करें, बातें करें, ना सुने तो मैं कैसे बोलूँ। तो क़यामत तक अल्लाह इसका सदका जारिया आप सब के नामे अमाल में डाल दें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुमल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वलरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। आपने ये आयत कभी पहले सुनी? आप में से किस किस ने अपनी शादी के दिन ये आयत सुनी थी? आप तो उस वक्त पार्लर में बैठी होंगी। जब आपकी शादियाँ हुई होंगी उस वक्त पार्लर में जाने का रिवाज नहीं था। खुतबा निकाह की आयत है। दो तकवे हैं इसमें, नोट किया आपने? कैसे पता चला? आइए देखते हैं। रुकू नंबर 12 है, पहली 10 आयतें। सूरत निसा का पहला रुकू। टॉपिक है मुआशरती मामलात की इस्लाह। या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुम। ऐ लोगो, अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। और यतीमों का माल इनको दे दो और हलाल चीज़ों के बदले नापाक और आराम चीज़ें ना लो। और अपने मालों के साथ इनके माल मिलाकर ना खा जाओ। बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ न रख सकोगे, तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगें तुम इनसे निकाह कर लो, दो दो, तीन तीन, चार चार से। लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो तो एक ही काफ़ी है। या तुम्हारी मलकियत की लौंडी, ये ज़्यादा करीब है कि ऐसा करने से ना इंसाफी और एक तरफ झुकने से बच जाओ और औरतों को इनके महर राजी खुशी दे दो। अगर वो खुद अपनी खुशी से कुछ महर छोड़ दें तो इसे शौक से खुश होकर खाओ पियो। बेअक्ल लोगों को अपना माल ना दे दो, जिस माल को अल्लाह ताला ने तुम्हारी गुजरान के कायम रखने का जरिया बनाया है। हाँ, इन्हें इस माल से खिलाओ पिलाओ, पहनाओ ओढ़ाओ और इन्हें माकूलियत से नरम बात कहो। और यतीमों को इनके बालिग होने तक सुधारते रहो और आजमाते रहो। फिर अगर इनमें तुम होशियारी और हुस्ने तदबीर पाओ तो इन्हें इनके माल सौंप दो। और इनके बड़े हो जाने के डर से इनके मालों को जल्दी जल्दी फजूल खर्चियों में तबाह न करो। मालदारों को चाहिए कि इनके माल से बचते रहें। हाँ, मिस्कीन मोहताज हो तो दस्तूर के मुताबिक वाजबी तौर से खा ले। फिर जब इन्हें इनके माल सौंपो तो गवाह बना लो। दरअसल हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला ही काफ़ी है। माँ बाप और ख्वाहिश व अकारिब यानी रिश्तेदारों के तरके में मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप और ख्वाहिश व अकारिब यानी रिश्तेदार छोड़ कर मरे, हाँ वो माल कम हो या ज़्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वो कराबत दारों और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो तुम इसमें से थोड़ा बहुत इन्हें भी दे दो। और इनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि इस बात से डरें कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़ दें जो नातवां हो, जिनके ज़ाया हो जाने का अंदेशा रहता है, तो इनकी क्या चाहत होती? यानी अपने बच्चों को यतीम होता देखकर सोच लो अपनी आंखों में। बस अल्लाह तला से डर कर जची तुली बात कहा करें। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अन करीब वो दोजख में जाएंगे। पहला ही रुकू इंसानी माशरती ताल्लुकात की इस्लाह। गजवाए उहद के तस्करे के फौरन बाद सूरत निसा में यतीमों के माल क्यों आए, बेवों के क्यों? क्योंकि उहद में 70 सहाबा जो शहीद हुए थे ना, तो घर घर में अब यतीम और बेवाएं आ गई, तो यहाँ उनके हकूक हैं। और हुत्बा निकाह में भी ये बातें बताई जाती हैं। आज भी अगर लड़की लड़के को शादी से पहले सिर्फ ये पहली आयतें सुनवा कर इसका थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन दे दिया जाए तो बहुत से घर टूटने से बच जाए। आपके मेरे लिए अल्लाह की रजा को पाने वाले कौन से अमल हैं? अल्लाह से डर कर रहना, सिला रहमी करना, अल्लाह की निगरानी को महसूस करना, हक महर अदा करना, बीवियों के साथ अदल का मामला करना और यतीमों का ख्याल रखना। माल नादान लोगों के हवाले ना करना, नादान लोगों के अखराजात का ख्याल रखना, यतीमों की खबर गिरी करना, हकूकुल इबाद का ख्याल रखना, सच्ची और भली बात कहना और विरासत की तकसीम। इस सूरत में आपको अब विरासत के कुछ मज़ीद अहकाम हैं। फेवरेट टॉपिक है मेरा, अगर आप चाहें तो इस मौजू पे भी अलग से लेक्चर भी हैं, और इसी आयत की तफसीर इन डेप्थ की सुन लीजिए जाकर सूरत निसा की तफसीर में, तो आपको इंशाल्लाह सब के हिस्से समझ आ जाएंगे। आइए ज़रा तर्जमा पढ़ते हैं। रुकू नंबर 13 आयत नंबर 11 से 14, 11 to 14, वसीयत के अहकाम। युसीकुमुल्लाहुफ़ी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और दो से ज़्यादा हों तो इन्हें माले मतरूका का 2/3 यानी 2/3 मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो इसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का 1/6 हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद हो और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हों तो इसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर इसकी माँ का 1/6 हिस्सा है। यह हिस्से इसकी वसीयत की तकमील के बाद हैं, जो मरने वाला कर गया हो या कर्ज की अदायगी के बाद। तुम्हारे माँ बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में ज़्यादा करीब तर कौन है, यानी जिस खुशी से बच्चों को देते हो इसी खुशी से माँ बाप को भी दो। ये इसे अल्लाह ताला की तरफ से मुकरर करता है, बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और कामिल हिकमतों वाला है। तुम्हारी बीवियाँ जो छोड़ मरें और इनकी औलाद ना हो तो आधो आध तुम्हारा, अगर इनकी औलाद हो तो इनके छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है। इसकी वसीयत की अदायगी के बाद जो वो कर गई हों या कर्ज के बाद, और जो तरका तुम छोड़ जाओ इसमें से इनके लिए 1/4 यानी 1/4 है, अगर तुम्हारी औलाद ना हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर इन्हें तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा इस वसीयत के बाद जो तुम कर गए और कर्ज की अदायगी के बाद। और जिनकी मीरास ली गई है वो मर्द या औरत का लाला हो, यानी इसका बाप बेटा ना हो, और इसका एक भाई और एक बहन हो तो इन दोनों में से हर एक का 1/6 हिस्सा है, अगर इससे ज़्यादा हो तो 1/3 में सब शरीक हैं इस वसीयत के बाद जो की जाए, और कर्ज के बाद जबकि औरों का नुकसान ना किया गया हो। ये मुकरर किया हुआ अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ताला दाना और बुर्दबार है। ये हदें हैं अल्लाह ताला की मुकरर की हुई, और जो अल्लाह ताला की और इसके रसूल की फरमा बरदारी करेगा इसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और इसके रसूल की नाफरमानी करे और इसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकले इसे वो जहन्नुम में डाल देगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा, ऐसों ही के लिए रुस्वा कुन अजाब है। सुभान अल्लाह। इल्मुल वरासत, इसको इल्मुल फराइज भी कहते हैं, सिर्फ 5-6 आयतों में सब के हिस्से दे दिए अल्लाह ने। इससे खूबसूरत दीन भी किसी का हो सकता है? तो क्या पता चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सहाबा कराम को उसूल मीरास सीखने की तलकीन की गई थी, और सहाबा असूल और फराइज में माहिर थे, यानी सहाबा को विरासत के मसाइल बहुत अच्छी तरह से समझ आते थे। याद रखिए, इल्मुल फराइज है, यानी इसका सीखना फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि बेशक आदमी और औरत 60 साल तक अल्लाह की इताअत में नेक अमल करते रहते हैं, फिर इन्हें मौत आती है तो वो वसीयत में किसी को नुकसान पहुंचा जाते हैं, तो इन दोनों के लिए जहन्नम की आग वाजिब हो जाती है। फिर अबू हुरैरा ने आयत तिलावत फरमाई कि विरासत की तकसीम वसीयत के निफाज और कर्ज की अदायगी के बाद है, और वो वसीयत नुकसान पहुंचाने वाली ना हो, और ये बहुत बड़ी कामयाबी तक, यानी आयत के आखिर तक। ये तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है। आपने मैंने इन आयतों को पढ़कर क्या सीखा? नंबर 1, नेक कामों की वसीयत कीजिए, अपनी ज़िंदगी में अपनी वसीयत लिख लीजिए, कर्ज है अगर तो उसको अदा करने की वसीयत कीजिए, कर्ज़दार है कोई तो उसको मोहलत दीजिए, रसूलुल्लाह की पैरवी कीजिए, और अल्लाह की हदूद की हिफाजत कीजिए, और अल्लाह की मुकम्मल इताअत कीजिए। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद आखिर रुकू है पारे का, रुकू नंबर 14 आयत 15 से 22, इस्लामी सजाओं की हिकमत। इसके बाद सिर्फ एक आयत पीछे होगी, वल्लाती यातीन अल्फाहिशत मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में जो बेहयाई का काम करें इन पर अपने में से चार गवाह तलब करो, अगर वो गवाही दें तो इन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत इनकी उम्रें पूरी कर दे या अल्लाह ताला इनके लिए कोई और रास्ता निकाले। तुम में से जो दो अफराद ऐसा काम कर लें इन्हें ईज़ा दो, अगर वो तौबा कर लें तो इनसे मुंह फेर लो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है। दुआ करें अल्लाह मुझे आपको ऐसे लोगों में शामिल करें जो बवजह नादानी कोई बुराई कर गुजरें फिर जल्द इससे बाज आ जाए और तौबा करें तो अल्लाह ताला भी इनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला हिकमत वाला है, इनकी तौबा नहीं जो बुराइयाँ करते चले जाएं यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कहते कि मैंने अब तौबा की, और इनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफर पर ही मर जाए। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम्हें हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के विरसे को ले बैठो, इन्हें इसलिए रोक न रखो कि जो तुमने इन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ले लो, और बात यह है कि जो कोई खुली बुराई और बेहयाई करें इनके साथ अच्छे तरीके से रहन सहन करो यानी बूदोबाश रखो, गो तुम इन्हें नापसंद करो लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को बुरा जानो और अल्लाह ताला इसमें बहुत ही भलाई दे दे। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और इनमें से किसी को तुमने खजाने का खजाना दे रखा हो तो भी इसमें से कुछ ना लो, क्या तुम इसे नाहक और खुला गुना होते हुए भी ले लोगे? ये है वो आयत जो हज़रत उमर के किस्से में मैंने आपको सुनाई थी कि हज़रत उमर ने हक मेहर की हक बंदी करना चाहिए तो एक औरत ने आकर ये आयत पढ़ के बता दी कि अल्लाह ने तो कहा किंतार दे दो, तो 500 दिरहम किंतार तो नहीं होते, तो उमर ने कहा था कि औरत मर्द से ज़्यादा फकी है। फरमाया तुम इसे कैसे ले लोगे हालांकि तुम एक दूसरे को मिल चुके हो और इन औरतों ने तुमसे मजबूत अहदों पैमान ले रखा है, और इन औरतों से भी निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया मगर जो गुजर चुका। ये बेहयाई का काम है और बुग़्ज़ का सबब है और बहुत बुरी राह है। इल्ला मा कद सलफ, इसको लिख लें। दीन इस्लाम का खूबसूरत मिजाज, घड़े मुर्दे ना उठाओ, पिछली ज़िंदगी में जो हो गया सो हो गया, तो इस रुकू से आपको मुझे अमल की क्या बातें मिली? गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा में डिले ना करें, मौत का इंतज़ार ना करें, अपनी इसलाह करते रहें और तौबा में जल्दी करें, बुरे कामों से बचना, हुकूक व फ़राइज़ को समझना, बेहयाई से बचना, और इसमें लेस्बियन होने या होमोज होने की सज़ा भी मिल रही है। अल्लाह हमारी नस्लों को इस प्लैग से बचा दे। अब आखिर में सिर्फ एक आयत है जिसका ताल्लुक अगले पारे से है, तो मैं वो आयत पढ़ देती हूँ। आयत 23, क़वानीन इलाही की पाबंदी। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, हराम की गई है तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की लड़कियाँ और बहन की लड़कियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी रसाई बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में यानी सौतेली बेटियाँ, और तुम्हारी इन औरतों से जिनसे तुम मुबाशरत कर चुके हो, हाँ अगर इनके साथ तुमने मुबाशरत ना की हो, किनाया है शौहर बीवी के ताल्लुक का, तो इन लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इस रुकू में अल्लाह ने मुहर्रिमात की लिस्ट बता दी। मर्द के इर्द गिर्द रहने वाली औरतें जैसे माँ बहन बेटी भांजी भतीजी, इनसे निकाह हराम क्यों किया? ताकि घर का माहौल पाक रहे, वरना आप इतने सुकून से यहाँ ना बैठती। घरों के अंदर अगर ऐसा माहौल हो जाएगा जहाँ औरतें मर्द लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाएं, तो आप सोचिए कितनी खराबी आएगी, और अफसोस की बात है कि आज ये खराबियाँ नज़र आ रही हैं। अल्लाह आपको मुझे बताए क्या सीखा इसमें से? रिश्तों की हुरमत का ख्याल रखना है, अल्लाह ताला के कवानीन की पाबंदी करनी है और उसके अहकामात पर दिल से मुतमईन होना है, और महरम रिश्तों की इज्जत की पासदारी करनी है, अपनी बेटियों को ऐसे लिबास नहीं पहनाने कि भाइयों की मामुओं की चचाओं की उन पे नजरें पड़े, चाहे 2-4 साल की बच्ची है, टाइट्स मत पहनाइए, स्ट्रेची कपड़े मत पहनाइए, आप महरमों में जिना होने लगा। अल्लाह आपको मुझे बचा के रखे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तवाब रहीम वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही वअस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ये पारा मुबारक हो। इंशाल्लाह कल अगले पारे के साथ मिलेंगे।